ओम शांति। आप सभी बहुत अच्छे दिनों में मधुबन घर में पधारे हैं। हमारी मातेश्वरी जी की स्मृति का दिन, पांडव भवन उनकी कर्म भूमि है, चरित्र भूमि है। सभी ने दीदी का, बाबा का, मम्मा का कमरा देखा, बंद है इस समय, लेकिन ये जो मेन गेट है पुरानी बिल्डिंग में, बाबा के कमरे के पीछे है, साथ में ही लगा हुआ मम्मा का कमरा था। मम्मा ने वहीं अंतिम विदाई बच्चों को अंगूर खिलाते हुए ली थी। इस बगीचे में पहला अंगूर निकला था, ये कुटिया के पास बगीचे में। अभी तो अंगूर हटा दिए हैं, लेकिन उस समय अंगूर का पहला फल निकला था और बाबा ने मम्मा के हाथों में अंगूर रखा और मम्मा ने अपने हाथ से ही, जो भी उस समय थे, क्योंकि मेरे लौकिक पिताजी यहीं पर थे, तो मम्मा से सबने अंगूर लिए। और बाबा को तो पता था बच्ची विदाई ले रही है, अभी अंतिम विदाई है, इसलिए बाबा ने सबको मिलाया, दृष्टि दिलाई और सबको कहा अभी जाके छोटे हाल में सब योग करो, वो हिस्ट्री हाल में। तो योग में सबको बिठाया और मम्मा अव्यक्त हो गई। वो 24 जून 65 का दिन यज्ञ के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन का दिन था, क्योंकि कभी भी ये नहीं किसी ने सोचा था कि बाबा के पहले ही मम्मा अव्यक्त हो जाएंगे। लेकिन मम्मा की जो पुरुषार्थ की लगन थी, उनका जो स्पेशल लक्ष्य रखा कि मुझे हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इसी स्लोगन के आधार से हुकुमी हुकुम चला रहा है, इसी एक निश्चय से, भावना से मम्मा की पुरुषार्थ ऐसा तीव्र रहा, जो 2 बजे अमृत वेले उठना, छतों पर एकांत में तपस्या करना, बाबा से बहुत गहरी मीठी मीठी रूह रिहान करना और आलमाइटी बाबा की विशेष पालना। ब्रह्मा बाबा के द्वारा बाबा का पाठ तो चलता ही था, लेकिन कुछ एक संदेशियां भी थी जो कभी कभी वो डायरेक्ट आलमाइटी आकर के मम्मा को स्पेशल पढ़ाते थे। इस बार हमने सभी सेंटर्स पर मम्मा की रूह रियान भेजी है, जो आलमाइटी से मम्मा ने बातें की हैं। आलमाइटी ने खुद बात किया डायरेक्ट, मैं यहाँ भी कहूँगा कि आपको सुनाया जाए। सेंटर पर तो जा चुका है, आज मैं ऑनलाइन कहीं कहीं की मुरली सुन रहा था, तो वहाँ पर गुरुवार का दिन है तो वहाँ यही पॉइंट सुनाई जा रही थी। तो मम्मा ने ऐसा तीव्र पुरुषार्थ किया जो स्वयं अथॉरिटी बन गई, अनुभव की अथॉरिटी बन गई। बाबा का कहना और मम्मा का करना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। हम सब कहते हैं हम क्या तीव्र पुरुषार्थ करें, बाबा कहता है बच्चे कोई नया रास्ता थोड़ी लेना है, जो कुछ बाबा कह रहे हैं वो करते चलो। तो बाबा ने कहा और हमने किया, यही मम्मा ने लक्ष्य रखा और उसी से ही वो नंबर 1 बन गई, संपन्न संपूर्ण बनी। और अभी भी गुप्त नदी सरस्वती नई दुनिया की स्थापना के कार्य में कहाँ पर बाबा ने उनको सेट किया है वो तो बाबा ही जानता है, बताता नहीं है। हम सब बच्चे भी अपने मात पिता को ही फॉलो कर रहे हैं, जो कदम हमारे बाबा ने रखे, मम्मा ने रखे, हम सबको भी यही बाबा कहते हैं बच्चे कदम पर कदम रखो, बस नया रास्ता नहीं है। तो मम्मा ने जैसे अपनी संपन्नता को प्राप्त करने के लिए सिर्फ ज्ञान सुनाया नहीं, पॉइंट्स दी नहीं, लेकिन उस पॉइंट्स की अनुभवी बनी। अनुभव एक बहुत बड़ी शक्ति है, अथॉरिटी है, और अनुभवी कभी भी कहीं धोखा भी नहीं खाता, कहीं भटकता भी नहीं है, कहीं फंसता भी नहीं है। क्योंकि आजकल माया के बहुरूप, अगर थोड़ा सा अनुभव की कमी है तो बहुत जल्दी अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए बाबा चाहते हैं कि मेरा एक ही बच्चा जो कुछ सुनता है उसका अनुभव करे। पॉइंट्स तो बहुत हैं, पॉइंट्स सुनाने के लिए अगर किसी को क्लास दिया जाए तो सब कराते हैं, बहुत अच्छा अच्छा कराते हैं, लेकिन बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे पॉइंट स्वरूप बन जाए। तो सभी ने पॉइंट स्वरूप का तो अनुभव किया है ना, योग में भी जब बैठते हो तो मैं आत्मा एक पॉइंट हूँ, एक लाइट हूँ, एक ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, पहला अभ्यास तो यही है, और उसका तो जरूर सभी ने अनुभव किया होगा। इतना योग करते हैं, एकांत में बैठते हैं, तो मैं जो हूँ जैसा हूँ उस अनुभव में रहना, और उसके फायदों का अनुभव हो भाई। आत्मा समझने से, ज्योति बिंदु रूप में रहने से फायदे क्या हैं आखिर? जब फायदे होते हैं तो उस अनुभव में और गहराई में हम जाते हैं। तो हम सब जानते हैं जब आत्मा राजा है, मालिक है, तो प्रकृति उसके कंट्रोल में रहती है, प्रकृति उसकी दासी है, सेवक है। सतयुग और त्रेता के अंदर जो प्रकृति सतो प्रधान थी, दासी के रूप में सेवा दे रही थी, आज वही प्रकृति हर इंसान को परेशान कर रही है। बाह्य प्रकृति के तत्व भी सुनो समाचार, कहीं इतनी तेज गति से बाढ़ें आ रही हैं, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं ज्वालामुखी फट रहे हैं। पांचों तत्व अपना विकराल रूप दिखा रहे हैं, जो सेवाधारी थे वो दुश्मन के रूप में बदला ले रहे हैं। और सबसे बड़ी जो हम सब आत्माओं के साथ प्रकृति चल रही है, ये शरीर, ये भी तो प्रकृति ही है, पांच तत्वों का ही। लेकिन इसी शरीर को भी आप देखो, योगियों को भी शरीर कितना परेशान करने लगता है। तो हम सब जितना आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं, पॉइंट स्वरूप में रहते हैं, उसका अनुभव करते हैं, तो सबसे पहले हमें कोई भी कर्म इंद्रिय धोखा नहीं देती। इस धोखे से पहले बचना है, नहीं तो कोई को आंखें धोखा दे रही हैं, कोई को जबान धोखा दे रही है, कोई को कान धोखा दे रहे हैं, कोई को हाथ धोखा दे रहे हैं। कहते चाहता नहीं था, हो गया, पर वश स्थिति है। लेकिन जितना आप आत्मा अभिमानी स्थिति का अनुभव करेंगे, अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे, उतना इन कर्म इंद्रियों के मालिक बन जाएंगे। मन, बुद्धि, संस्कार आपके कंट्रोल से कार्य करेंगे। ऐसे नहीं, सोचा नहीं था, बुद्धि भटक गई, संकल्प आ गया, बोल निकल गया, कर्म हो गया। ये अधीनता की स्थिति, माना आत्मा मालिक है, इस मालिकपन का हमने अनुभव नहीं किया। मालिक के आर्डर के बिना कोई कर्मेंद्रीय कर्म नहीं कर सकती, इतना अपने आप को इस आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करो, इसके अनुभवी बन जाओ। ये अनुभव हो जाएगा तो बहुत सारी बुराइयों पर, विकारों पर, कई प्रकार के विकर्मों पर विजय हो जाएगी। नहीं तो कहीं न कहीं कोई न कोई चलते चलते कर्म विकर्म का रूप ले लेते और वो बंधन बन जाते हैं। आज बाबा ने वरदान में भी यही कहा कि बच्चे कर्म बंधन से मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अगर इस ब्राह्मण जीवन में किसी को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है, सुख स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है, तो उसके पहले संगम की जो मूल स्थितियां हैं, जिसको बाबा ने भी अनुभव किए हैं, दादियों ने भी अनुभव किए, और उसके बाद वो अनुभव की अथॉरिटी बन करके हम सबको गाइड करते रहे। हम सभी भी अनुभव की अथॉरिटी तब बनेंगे जब उसका कभी एकांत में बैठ करके अनुभव करेंगे। और सबके पास इसके लिए समय होना चाहिए, ऐसे नहीं मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ। कई तो बाबा के बच्चे क्लास में आए, मुरली सुनी, नियम पालन किया और चले गए। उसके बाद क्या बाबा ने कहा है, क्या करना है, कैसी अपनी दिनचर्या रखनी है, वहाँ की वहाँ रहे। इसलिए अनुभव की अथॉरिटी बनने के लिए अपने आप को एकांत में ले जाना, अपने आप से बातें करना, अपने को पढ़ाना, कभी कभी एकदम इस शरीर से अलग हो करके, ये शरीर अलग है मैं अलग हूँ, अनुभव तो करके देखो। बाबा कहता है बच्चे तुमने चोला पहना है, ये ड्रेस है, तुम आत्माएं अलग हो, ये शरीर अलग है, तुम शरीर लेती हो शरीर छोड़ती हो। तो जब शरीर छोड़ के जाएंगे तब तो अनुभव सुना नहीं सकेंगे। आजकल तो ये बहुत बड़ी माया ने बच्चों को अलबेला बना दिया। 2 साल के लॉकडाउन ने सबकी बुद्धि को लॉक कर दिया है। ऑनलाइन किस लिए रखा गया था, क्यों शुरुआत की गई थी, भाई ऐसे कुछ नियम बनाए गवर्नमेंट ने इस बीमारी से, महामारी से बचाने के लिए, भाई अपने घरों में आप रहो, पब्लिक में नहीं जाओ, बीच में सबके नहीं जाओ। तो उनके कुछ गाइडलाइन के कारण हमारे सेंटर्स को कहा गया कि अभी सेंटर बंद करो, ऑनलाइन मुरलियाँ शुरू करो, अपने अपने घरों में लोग सुने। और 2 साल के अंदर बाबा ने इस एक साइंस के साधनों द्वारा सेवाएं बहुत अच्छी कराई, कम खर्चे में बहुत अच्छी सेवाएं हुई, क्योंकि लोग फ्री थे, घरों में बैठे थे, अपने अपने स्थान पर जिन्होंने भी सुना था ब्रह्मा कुमारी का कोर्स क्या है, तनाव मुक्ति के शिविर क्या हैं, लेक्चर क्या हैं, तो लोगों ने ऑनलाइन सुन करके उसका बहुत अच्छा फायदा लिया। और उसके कारण सेवाओं में कोई भी कमी नहीं आई। जो हमारे स्टूडेंट्स इतनी भाग दौड़ खर्चा करने के बाद बनते थे, हमने देखा, अनुभव किया, और इस 1.5-2 साल में मैं समझता हूँ ऑनलाइन मैंने विश्व का कोई भी कोना, कोई भी सेंटर नहीं छोड़ा जहाँ मेरी क्लास न हुई हो। ऑनलाइन ही मिले, और जब मिलते थे तो पहला परिचय यही सुनते थे कि आपकी इस क्लास के अंदर 50 लोग, 70 लोग, 90 लोग नए जुड़े हैं जो ऑनलाइन कोर्स करके मुरली सुनने आ गए, आने लगे हैं, वहाँ तक पहुँचाया। तो सेवाएं तो बाबा ने बहुत अच्छी कराई, लेकिन जब हम कभी कभी अपने बाग-बाग के बच्चों के स्पेशल सीन देख लेते थे टीवी पर, सामने आते थे सीन, तो बड़ा आश्चर्य लगता था, स्टूडेंट लाइफ ही नहीं रही, बिस्तर पर पड़े हैं, नहाया है नहीं नहाया है, मुरली सुन रहे हैं, योग कर रहे हैं। जो स्टूडेंट लाइफ का एक रस है, आनंद है, वो धीरे धीरे लुप्त हो गया। इसलिए अलबेलापन, आलस्य, बहानेबाजी, तीनों ने, जो बाबा कहता 3 रूप से माया वार करेगी, उन कई बच्चों पर वार किया है, और कई तो बहुत अच्छे बने हैं और अच्छा उन्होंने अनुभव किए हैं। एकांत मिली है, सब बातों से मुक्त हो गए, जो बार बार कहते थे मुझे समय अपने लिए नहीं मिलता, उनको बहुत सारा समय मिल गया। तो दोनों फायदे भी हुए हैं, लेकिन जब स्थान छुट्टी मिली है, खुल गए हैं, सब कार्य व्यवहार जैसे था नॉर्मल वैसे चलने लगा है, तो फिर अलबेलापन, वो बाबा की सकास, डायरेक्ट सेवा केंद्र का वातावरण, वहाँ की बहनों की तपस्या के वाइब्रेशन, वहाँ का स्नेह, वहाँ की शक्तियाँ, वहाँ का ब्रह्मा भोजन, वहाँ की टोली, उन सब से वंचित, घरों में ऑनलाइन सुन रहे हैं। इसलिए अभी अलर्ट होने की ज़रूरत है, स्टूडेंट लाइफ में आओ और बाबा के घर में आकर के अच्छी तपस्या। एक स्थान पर अगर 15-20 भी योगी आत्माएं बैठती हैं तो उनके योग के प्रकंपन से बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। ये विश्व परिवर्तन का कार्य अकेले अकेले नहीं किया जा सकता, इसलिए हम सबको एक लक्ष्य रखना चाहिए, बाबा को बहुत बड़ा कार्य कराना है। इतनी बड़ी विश्व में दो ही चीजें हैं, एक व्यक्ति परिवर्तन हो, दूसरा प्रकृति परिवर्तन हो। व्यक्तियों के लिए हमने वाचा सेवा की है, कर रहे हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन सब तक तो स्थूल में साकार में नहीं पहुंचा जा सकता। और प्रकृति को भी पावन बनाने के लिए और कोई विधि नहीं है, केवल आप 15 मिनट भी सेंटर के वातावरण में एकाग्र होकर के, संगठित होकर के योग करेंगे तो उसके जो प्रकंपन हैं, उसकी जो वेव्स हैं, वो इस प्रकृति के तत्वों को परिवर्तन करने में सहयोग देंगे। ये बहुत बड़ा कार्य है, और ये कार्य अगर आप कहो हम अपने घर से कर रहे हैं, तो अगर एक घर पर वैसे भी एक चूल्हे में एक लकड़ी डाली जाए, कितनी आग होगी, खाना भी नहीं पकेगा। अगर ज्वाला स्वरूप योग, पावरफुल योग, संगठन का योग, जिसमें एक संकल्प से सब लोग बैठें और योग करें, बाबा के महावाक्य सुनाएं, एक पॉजिटिव वायुमंडल बने, वो तो संगठन से ही बनता है। संगठन बहुत फायदे भी देते हैं और कई बार संगठन में नुकसान भी होते हैं, और वो नुकसान ये होते हैं, कोई एक सुस्त होता है, ऐसे सोता है तो दूसरे का योग टूट जाता है। अटेंशन रखने की जरूरत होती है, इसलिए अनुभवी मूर्त बनने के लिए आप सबको बंधनों से मुक्त कैसे रहा जाए, संगम युग की पहली स्टेज कर्म बंधन मुक्त स्थिति। कभी मुक्त बन करके देखा है, शरीर से ऐसे मुक्त स्थिति का अनुभव करो। पहले तो बंधन यही है ना सबसे बड़ा, कौन सा बंधन है, देह का ही बंधन है आत्मा को। फिर उसके बाद देह के साथ कर्मिंद्रियां हैं, उन कर्मिंद्रियों का बंधन है, उनके साथ संबंध है। फिर उसके बाद जो जिनसे पालना मिली, जन्म मिला, पढ़ाई मिली, उनके बंधन है, संबंधों के बंधन है। और साथ साथ जो हमारे पास्ट के संस्कार हैं, उन संस्कारों के बंधन हैं, उन संस्कारों के अनुसार ही संकल्प बोल कर्म हो रहे हैं। तो जब बाबा मिला है और बाबा हमें विधि बता रहा है, बच्चे तुम कर्म योगी हो, कर्म करते बाबा की याद में रहो, तो ये कर्म बंधन नहीं बनेगा। प्रयोग करके देखो, इसका अनुभव करो, अथॉरिटी बनो कि वो कर्म बंधन स्थिति है क्या। वैसे भी बंधन में तो आप सब जानते हो, दुखी दुख है, परेशानी ही है। अब जब हम बंधन से मुक्त कहते हैं तो बाबा के महावाक्य सुनते कभी कभी विचार चलता है कि आत्मा अगर शरीर से मुक्त है तो वो जीवन मुक्त स्थिति, जीवन में है, जीवन से मुक्त है, माना बंधनों से मुक्त है। तो उस बंधनों को हम चेक करें, कौन कौन से बंधन आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। जब आप याद में बैठते हो तो पता चलता है, इधर बुद्धि जाती है, इधर जाती है, संबंधों में जाती है, कोई सेवाओं में जाती है, कहीं ना कहीं भटक जाती है। भटकी हुई बुद्धि बंधन में जरूर बंधी हुई है। पहली बात है, कई लोग अपने आप को कभी एकांत में ले जा करके महसूस ही नहीं करते। हम ऐसे पूछ देंगे, बंधन मुक्त हो? हाँ जी, बंधन मुक्त है। लेकिन एक बहुत सूक्ष्म और रायल बंधन जो आत्मा को अपनी तरफ खींचते हैं, बार बार आकर्षित करते हैं, आंखों के रस का, देखने का बंधन है, बोलने का बंधन है, सुनने का है, खाने पीने का है, कर्म इंद्रियां, अनेक बंधनों में आत्मा को जकड़े हुए हैं। जब आप अपने पॉइंट स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे, एक अभ्यास करके देखना, मैं कई बार करता हूं, बिस्तर पर सोते हो, शरीर में आत्मा प्रवेश करे और शरीर से निकल करके बाहर जाए। उसे निकलेगी नहीं, निकलेगी तो शरीर मिट्टी हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, लेकिन ये जो मर्ज और इमर्ज है, जैसे हमारी संदेशियां बाबा के पास जाती हैं, ट्रांस में जाती हैं, मैं बाबा के पास गई, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, कितनी सारी बातें नोट करके सुनाते हैं आके, आत्मा तो नहीं जाती है ना, कि आत्मा ही निकल जाती है। आत्मा चली जाएगी तो शरीर तो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये दृश्य जो है यहाँ की जो स्मृतियां हैं वो मर्ज हो जाती हैं, और वहां का जो दृश्य है जहां पर बाबा ले जाना चाहता है अव्यक्त लोक अव्यक्त वतन, वो दृश्य सामने जैसे दिव्य नेत्र के सामने इमर्ज हो जाता है। ये बुद्धि का ही नेत्र है, अनुभव का ही नेत्र है, और उस अनुभव के नेत्र के आगे बाबा सामने आते हैं, बाबा बच्चों से अव्यक्ति रूप में बात करते हैं, रूढ़ियान करते हैं, दृश्य दिखाते हैं, संदेशियां जितना कैच कर सकते हैं, जितनी उनकी माइंड की डेवलपमेंट है उतना वो कैच करके हमको सुना देते हैं। ऐसे ही हम सभी भी इन स्मृतियों को मर्ज करें, अपने लाइट स्वरूप में आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के दिव्य बुद्धि के नेत्र से अपने अव्यक्त वतन का अनुभव करें, अपने मूल वतन का अनुभव करें। जैसे बुद्धि से आप अपने स्थान पर, मान लो दिल्ली में बैठे हो, आप कहते हो मैं मधुबन की सैर करके आऊं, तो बैठे बैठे बुद्धि से इमर्ज करते हो पांडव भवन में बाबा कमरा है, ये कुटिया है, ये शांति स्तंभ है, ये हिस्ट्री हॉल है। बैठे तो अपने स्थान पर हो, लेकिन बुद्धि वहां के संकल्प मर्ज करके यहाँ के संकल्प इमर्ज कर लेती है, और वो इमर्ज होते ही कई बार अनुभव भी बड़े अच्छे अच्छे होते हैं। मैं बाबा के कमरे में बैठा हूँ, बाबा की सकास मिल रही है, वो लाइट आ रही है, बाबा मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, सकास, कई बार अनुभव होने लगते हैं। जब वो यहाँ की स्मृतियाँ इमर्ज हो जाती और वहाँ की मर्ज हो जाती हैं तो अनुभव होता है। ऐसे ही हम सभी को बाबा कहते बच्चे अनुभव तो करके देखो मेरा अव्यक्त वतन क्या है, वहाँ पर कैसे बाबा एडवांस पार्टी को इमर्ज करता है, कैसे देवताओं और ब्राह्मणों की महफिल लगती है, कैसे बाप दादा विश्व कल्याण की वहाँ से सेवा करते हैं, वो फरिश्तों की दुनिया है और हमारा भी संपूर्ण स्वरूप वहाँ है, बाबा के पास इमर्ज होता है। तो बैठे यहाँ हैं, बुद्धि यहाँ है, शरीर यहाँ है, सब यहाँ ही है, लेकिन यहाँ के संकल्पों को मर्ज किया और बुद्धि से इमर्ज किया कि बाबा का व्यक्त वतन कैसे लाइट का वतन है, सुनाया है संदेशियों ने, बताया है सब कुछ कि ये ऐसी ऐसी चांदनी की जैसे लाइट है, हजारों चांद की जैसी लाइट, और उस लाइट के बीच में बहुत प्यारा शिव बाबा का रथ, ब्रह्मा का अव्यक्त स्वरूप है, बहुत संपूर्ण स्वरूप है, और वो बच्चों से मिलते हैं, बच्चों को दृष्टि देते हैं, बच्चों से रूढ़िहान करते हैं। इमर्ज तो कर सकते हैं उस दृश्य को, लेकिन कई बार अलबेलेपन में हम चल रहे हैं, ठीक है पढ़ाई हो गई, मुरली सुन लिया, योग कर लिया, एक अनुभव की अथॉरिटी बन जाए, कोई हिला ना सके उसको, कहे नहीं अव्यक्त वतन कुछ नहीं होता, मूल वतन कुछ नहीं होता, सब यही है। क्योंकि आजकल ज्ञानी आत्माएं भी कई बार बहुत बुद्धि का प्रयोग करती और अपनी अपनी बुद्धि से अपनी नई नई रिसर्च हमारे सामने रख देती हैं, और फिर बाबा की बातें भूल जाती हैं और रिसर्च के प्रभाव में आत्मा भटक जाती है। इसलिए बहुत अटेंशन देना कि अगर मैंने अनुभव किया है फिर कोई कितनी भी बातें करे, कोई भी सुना के जाए, मेरे पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए कर्म बंधन मुक्त बन करके शरीर से न्यारी स्थिति का अनुभव करते हुए हम इस साकार लोक से अव्यक्त लोक का, मूल लोक का, अपने स्वर्णिम युग का कई दृश्य इमर्ज कर सकते हैं। और कभी कभी बाबा कहते हैं बच्चे अपने पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाओ, अनेक भक्तों की लाइन है और मैं उनकी मनोकामनाएं पूरी कर रहा हूँ, मैं एक मूर्ति के समान बैठा हूँ, अनेक भक्त आ रहे हैं और अनेकों को मैं दृष्टि से नजर से निहाल कर रहा हूँ। आप कहेंगे तो कल्पनाएं हैं, सब कल्पना नहीं है, ये रियल अनुभव है, और कई आत्माओं को उसके साक्षात्कार होते हैं जब हम उस स्वरूप में यहाँ स्थित होते हैं। हमें पता नहीं चलता है कि हम कोई को अनुभव करा रहे हैं, साक्षात्कार करा रहे हैं, लेकिन अगर हम उस स्वरूप में स्थित होकर के सिर्फ बैठ जाए, अगर आज आपको कहा जाए कि आप अपने पूज्य स्वरूप में इष्ट देव इष्ट देवी के रूप में बैठ करके योग करो, तो ये समान तो लेना पड़ेगा ना कि मैं एक पूज्य आत्मा हूँ, मैं एक इष्ट आत्मा हूँ, अनेक भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले एक संकल्प लेकर के, और ऐसे योग हम कर रहे हैं जैसे जड़ मूर्ति ऐसे बैठी है, आंखें खुली हैं, ऐसे शरीर स्थिर है, और मैं एक चैतन्य मूर्ति आत्मा इस मंदिर से अनेकों को अनुभव करा रही हूँ। पूज्य स्वरूप की स्मृति से अनुभव होंगे, आपके भक्तों को अनुभव होगा कि मेरे इष्ट मेरे पर प्रसन्न हो गए, मेरे को आज आशीर्वाद देके गए, मेरे को अपनी बहुत अच्छी वरदानी दृष्टि दे करके गए, नजर से निहाल करके गए, अनुभव वो करेंगे। आपको उस स्वरूप में स्थित होना है, पूज्य स्वरूप है, पूर्व स्वरूप है, फरिश्ता स्वरूप है। बाबा कई बार कहते हैं बच्चे टॉप की स्थिति पर आकर के बैठ जाओ, संगम योग पूरे कल्प के चक्र में टॉप का स्थान है, मूल वतन हमारा आत्मा का जो घर है वो टॉप का स्थान है। उस टॉप की स्थिति में बैठ करके ऊपर से मैं सकाश दे रहा हूँ, मैं सर्च लाइट दे रहा हूँ, चारों ओर ये लाइट फैल रही है। अगर एक बार उस अनुभव में खो गए और उस अनुभव को कुछ प्राप्त कर लिया, अच्छा अनुभव हो गया, बार बार वो स्मृति आएगी और वो अनुभव होने लगेगा। इसलिए अनुभवी बनना बहुत जरूरी है। अगर दूसरे अनुभव नहीं कर सकते तो कम से कम जो बाबा इस समय ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान के आधार से मैं आत्मा सर्व खजानों से संपन्न हूँ, भरपूर हूँ। बाबा ने हमें कहा है बच्चे तुम मेरे बच्चे संतुष्ट मणियाँ हो, मैं एक संतुष्ट आत्मा हूँ, बिल्कुल संतुष्ट, कोई इच्छा नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ये तो अनुभव कर सकते हैं ना, बाबा आपने मुझे सब कुछ दे दिया। सिर्फ ऊपर ऊपर से गाने वाले तो गाने लगेंगे, पाना था सो मैं पा लिया, काम क्या बाकी रहा। लेकिन सचमुच पा लिया है, भगवान मिल गया, सब कुछ मिल गया, कोई इस कलयुग की इच्छा नहीं, कोई प्राप्ति के पीछे हम नहीं भाग रहे हैं। सब अविनाशी प्राप्तियां बाबा ने करा दी। अब उस प्राप्ति संपन्न संतुष्ट स्टेज में बैठ करके देखो क्या आनंद है उसका, क्या सुख है, कोई चीज नहीं खींचती। कितनी भी अच्छी चीजें सामने आएंगी आप न्यारे हो जाएंगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सबसे आवश्यक है इस समय हमें ये अनुभव करना कि मैं आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में स्थित हूं, बिल्कुल निट संकल्प स्थिति। जैसे बाबा कहता है निर्संकल्प स्थिति होती नहीं है, निर्विकल्प निर्व्यर्थ स्थिति बन जाती है। उसमें विकल्प बना, विकारी संकल्प व्यर्थ संकल्प ना आए, लेकिन मैं आत्मा हूं, मैं एक लाइट हूं, मैं परमधाम में परमात्मा के समीप हूं, वो पिता मेरा कितना सुप्रीम है, सर्वशक्तिमान है, सर्वश्रेष्ठ है। उनकी स्मृतियों के संकल्प तो हैं, वो अनुभव के संकल्प हैं, लेकिन उन संकल्पों का विस्तार नहीं है। तो बीच बीच में जब समय मिलता है, कई बार बाबा कहते चलो बहुत बिजी हो, कुछ मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए ब्रेक लगाओ संकल्पों को। ब्रेक तो पावरफुल है ना कि नहीं है? अगर ब्रेक पावरफुल नहीं है किसी की तो बहुत खतरनाक है, एक्सीडेंट हो सकता है। कम से कम संकल्पों को हलचल से स्टॉप करने की ब्रेक तो चाहिए ना, और हलचल तो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और बढ़ेगी। बाबा ने तो बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है, सब जानते हैं कलयुग कांत इतना सहज तो नहीं है, इतने बड़े विश्व का परिवर्तन होगा, इतना बड़ा विनाश होगा, बहुत सारी परिस्थितियां क्रिएट होंगी, और उन परिस्थितियों में बाबा के बच्चे अपनी अचल अडोल एक रस स्थिति में रहें, बिल्कुल भरपूर स्थिति में रहें कि बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया है, सब प्राप्तियां कराई हैं, अब मैं ऐसे दुख के वातावरण में इन आत्माओं को सहयोग दूं, मदद करूं, शांति दूं, शक्ति दूं, मैं आपका पैगंबर हूं, मैं शांति दूत हूं, संदेश वाहक हूं। लेकिन उसके लिए पहले से भरपूर होना पड़ेगा, पहले से अपने आप को संपन्न बनाएंगे तब ऐसी परिस्थितियों में मदद कर सके, नहीं तो खुद ही हाय हाय करेंगे अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। इसलिए बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे ऐसी दृश्यों के आने के पहले ही अपने आप को तैयार कर लें, अपने आप को फुल करके ही सबकी सेवा करें। ऐसे नहीं हम चले जाएं, बाबा गेट खोल दे हम चले जाएं, बाबा कहता गेट खुल जाएगा लेकिन आप बच्चे अंत समय में अपना साक्षात्कार करा के अनुभव करा करके अगर आएंगे तो यही सब आत्माएं जो लास्ट में अनुभव करेंगी वही तो आपके द्वापर में भक्त बनेंगे आकर के। जाएंगे तो सब वापस, लेकिन भक्त कैसे अचानक द्वापर में बन जाएंगे आकर के? अंत समय की स्मृतियों को लेकर के वापस जाएंगे और अंत समय की सेवा के लिए हम सबको तैयार होना है। तो ये जो संगम युग की स्थितियां हैं, सदा संतुष्ट मणि बन करके रहना, सदा निश्चिंत बेफिक्र स्थिति में रहना, सदा कर्म बंधन मुक्त स्थिति में रहना, सदा इस विदेही स्थिति का अनुभव करना, अशरीरी स्थिति का अनुभव करना, ज्ञान है, पॉइंट है, और पॉइंट सुनते हैं सुनाते हैं, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी बनना है। और अनुभव करने के लिए बाबा ने एक बार बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग किया था, बच्चे अगर कोई चीज का अनुभव नहीं किया है तो बाबा के आगे बैठ के जिद करो, मुझे करके जाना है, मैं आज भोजन नहीं करूंगी, आज नींद नहीं करूंगी, जब तक आप मुझे अनुभव नहीं कराओगे तब तक मैं यहां से उठने वाली नहीं हूं। अगर ऐसा संकल्प कर लो तो बाबा को कराना ही पड़ेगा। जैसे भक्ति मार्ग में नहीं, ये नौधा भक्तों को साक्षात्कार कराता है, कब कराता है, जब एकदम गला काटने पर आ जाते हैं तब कहता है अच्छा इसको संतुष्ट कर दो। ऐसे ही इस ब्राह्मण जीवन में अगर हमने कुछ नहीं अनुभव कर पाया, सिर्फ तोते की तरह रट लिया ज्ञान को, पढ़ लिया सुन लिया, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अच्छा है तो उससे हमारी जीवन बन जाए, अच्छा है तो हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारे बोल, हमारे कर्म, हर आत्मा को अच्छा अनुभव कराएं। जहां आप जाओ, जिधर से आप क्रॉस करो, उनको लगे कोई दिव्य आत्मा ही है मेरे पास, कोई इतने अच्छे वाइब्रेशन थे इसके, इतनी अच्छी भावनाएं थी, इतना स्नेह की दृष्टि थी, बोलो या न बोलो, लेकिन अगर सामने चले जाओ, उस वातावरण में चले जाओ, तो कितनी वहां के नेगेटिव वातावरण को चेंज कर देते। आज दादियां कहीं भी गई, दादियां कहां भी बैठ जाती थी, उस स्थान को कितना आकर्षक बना देते थे। इस पांडव भवन की स्थान की क्यों इतनी महिमा है, क्यों सब भागते हैं, मुझे पांडव भवन की भट्टी चाहिए, पांडव भवन की भट्टी चाहिए। अरे इस स्थान पर स्वयं ब्रह्मा ने तपस्या की, मम्मा ने तपस्या की, दादियों ने की, उस स्थान पर जहां स्वयं आदि पिता बैठा हो, उसने तपस्या की हो, यहाँ सैर किया है, यहाँ भोजन किया है, यहाँ पत्र लिखे हैं, यहाँ बच्चों से मिला है, ये पहाड़ी पर खड़े के योग किया है, कराया है, तो वो वाइब्रेशन तो है ना, उस वृत्तियों से वाइब्रेशन बने हैं और उस वाइब्रेशन के आधार से हमको खींच होती है, अनुभव होते हैं। योग लगाना थोड़ी पड़ता है, योग लगा हुआ रहता है, बाबा की याद आती है, लेकिन वो तभी हो सकता है जब उन्होंने खुद उस स्थिति में रह करके किया है। हम सभी भी बाबा के बच्चे हैं, वो स्थिति का अनुभव करें। तो अपने स्थानों पर कभी कभी गुफा में बैठ जाओ, गुफा में, कहीं अलग नहीं जाओ, जंगल में नहीं जाना, किनारा नहीं करना परिवार से, समाज से, सबसे, लेकिन जहां पर भी हो अलग हो जाओ शरीर से, ये तो अपने हाथ में ही है, इसके लिए कोई पॉइंट थोड़ी चाहिए, ज्ञान थोड़ी चाहिए। कई पूछते हैं अगर क्या पुरुषार्थ करूं, क्या पुरुषार्थ करूं, अरे क्या पुरुषार्थ करेंगे, इस शरीर से अलग होने का पुरुषार्थ कर लो, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। मैं एक लाइट हूं, मैं इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हूं, मैं एक बिंदु रूप आत्मा हूं, मैं पॉइंट हूं। आप देखेंगे कर्म इंद्रियां अपने आप शीतल हो जाएंगी, सब प्रकार की उत्तेजनाएं समाप्त हो जाएंगी, आवेश खत्म हो जाएगा, आवेग खत्म हो जाएगा, आत्मा की नेचर इतनी सरल, मिलनसार, शीतल, जो कल बाबा कह रहे थे ना, मैं बच्चों के अभी तक भी बच्चों को ढूंढता हूँ, कौन से बच्चे हैं जो मेरे अति मीठे हैं, सरल हैं, शीतल हैं, आज्ञाकारी हैं, वफादार हैं, सेवाधारी हैं, ऐसे बच्चों की बाबा को तलाश है। कल की मुरली में था ना, तलाश कर रहा, तो आप कहेंगे ना, मैं बाबा आपकी तलाश के अनुसार आ गया हूं, आपने ढूंढा और मैं आपके पास आ गया हूं, लेकिन क्या वो शीतलता का अनुभव है, वो मिठास का अनुभव है, वाणी के बोल किस प्रकार के निकलते हैं, अच्छे वातावरण में अच्छे लोगों के बीच में तो अच्छी बातें होती ही हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करने वाला हो, कोई हमारा अपमान करने वाला हो, कोई हमारी बातों को कट करने वाला हो, उसके सामने भी क्या मुख से फूल झड़ेंगे या कटु वचन निकल जाएंगे, क्या होगा? कभी ट्रायल किया है कि ऐसे व्यक्ति सामने आ जाएं उनके प्रति हमारी क्या भावनाएं होंगी जो हमारा बहुत विरोध कर रहे हैं। बाबा ने ऐसे समय पर अपने आप को स्थिर रखा कि बच्चे ये सब निर्दोष हैं, इनको पता ही नहीं है कौन क्या कर रहा है, कौन है इसके साथ, इसलिए गालियां दे रहे हैं। कोई बात नहीं बच्चे, आज ये गालियां दे रहे हैं ना, कल गिन गिन के फूल चढ़ाएंगे। कितना निश्चिंत स्थिति होगी, बेफिक्र स्थिति होगी। हम सब बाबा के बच्चे ऐसी बेफिक्र स्थिति का अनुभव करते हैं, ऐसी निश्चिंत स्थिति का अनुभव करते हैं, चिंता मुक्त स्थिति। कुछ भी हो जाए बाबा के बच्चों का कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन वो निश्चिंत स्थिति, बेफिक्र स्थिति। बाबा कई बार कहते हैं अच्छा शरीर भी छूट जाएगा, क्या होगा, नया शरीर मिल जाएगा, क्यों इसकी चिंता कर रहे हो तुम। वो खुशी की, पवित्रता की, वो शांति की, वो शीतलता की अनुभूति हो, एक एक गुण की अनुभूति हो। ऐसे हम कहें हम तो शांत स्वरूप हैं और थोड़ी सी बात कोई हो गई, शांति कहाँ चली गई पता ही नहीं। तो आप सभी केवल योग लगाने वाले नहीं बनना, योगी जीवन वाले हैं। अथॉरिटी आ जाए, हर एक चीज की अथॉरिटी कि हमने अनुभव किया है शांति की शक्ति क्या है, पवित्रता की शक्ति क्या है, सुख की शक्ति क्या है, परमानंद की अनुभूति क्या है। हम कहते हैं ब्राह्मण वो है जिसने अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया है। अतीन्द्रिय सुख इन इंद्रियों के सुख से बहुत ऊंचा सुख है। गोप गोपियों को वो सुख होता था, और गोप गोपी का अर्थ ही है जिसने अपनी कर्म इंद्रियों को शीतल बनाया है, उनको खत्म किया है, आकर्षण से मुक्त रहे हैं। जब हम इन देह की कर्म इंद्रियों की आकर्षण से मुक्त केवल अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तब अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। और परमानंद का, जो योगियों का परमानंद गया हुआ है, वो तभी होता है जब आत्मा और परमात्मा की समानता का अनुभव होता है। उन्होंने तो समानता को समा जाना कह दिया है कि आत्मा परमात्मा में समा जाएगी, और हम सब जानते हैं कि समाती नहीं है लेकिन उसके प्यार में खो जाती है। खो जाना और समा जाना बहुत बड़ा अंतर है। हम समान बन जाते हैं, खो जाते हैं उसके याद में, लव में, प्यार में लीन हो जाते हैं, लेकिन अस्तित्व तो बना हुआ है, अस्तित्व तो खत्म नहीं होता। समा गए, बुदबुदा जाके पानी में, सागर में गया, खत्म हो गया, ये तो विनाशी चीज हो गई, अविनाशी सत्ता को भी समाप्त कर दिया। तो बाबा ने कितना वंडरफुल, कितना रहस्य से हम सबको पढ़ाया है। हम सब इस पढ़ाई का अनुभव करें कि मैं आत्मा बाबा के प्यार में समा जाऊं। ऐसे नहीं मनन करें, चिंतन करें, इधर के विचार उधर के विचार, ठीक है, योग के फाउंडेशन हैं, योग के आधारशिलाएं हैं, लेकिन यथार्थ योग में मैं आत्मा और मेरा बाबा, और संकल्प शांत हो जाए, हलचल शांत हो जाए, उसका अनुभव करो। एक बार कर लोगे तो बार बार वो अनुभव आपको खींचेगा। जब बैठोगे योग में, वो अनुभव आपको फिर से उस स्टेज पर पहुंचा देगा। लेकिन अनुभव ही नहीं किया है, सिर्फ ऊपर ऊपर से हाँ आए बैठे पांच मिनट, ये बात आई वो बात आई, बाबा से ऐसे मिले, बाबा गुड मॉर्निंग, उठ के चल दिए, टाइम पास हो गया। अबे टाइम पास वाला कब तक करते रहेंगे? और ऐसे टाइम पास करने के लिए जो सेंटर्स पर आते हैं ना, उनको कहीं न कहीं से धोखा जरूर मिलता है, कहीं न कहीं से माया उनको थप्पड़ मारती है। वो टाइम पास कर रहे हैं, केवल कह रहे हैं हम जाते हैं, हमने हाजिरी लगाई। बाबा सिर्फ हाजिरी लगाना इसको ही महत्व तो नहीं देता, लेकिन कुछ अनुभव करके आए। अब मधुबन में आए हो, इतने अच्छे वातावरण के बीच में आए हो, और यहाँ से ऐसे खाली चले जाओ, अनुभव ही न करके जाओ तो क्या फायदा? आने का खर्चा ही किया, समय भी दिया, संपत्ति भी लगाई, सब कुछ किया, लेकिन अनुभव ही नहीं कर पाए। तो अनुभव करो, और अनुभव करने के लिए बस और कुछ नहीं, मेहनत करो। सबके बीच में रहते एक के अंत में जाने का अनुभव करो, एकांत है बीच में, संगठन में बैठे हैं, लेकिन यहाँ के संकल्प मर्ज हैं और बाबा के संकल्प मर्ज, वो तो अनुभव कर सकते हैं ना। और ये अनुभव अगर एक बार आपने कर लिया, शरीरी स्थिति का, विदेही स्थिति का, एकदम न्यारी स्थिति का, बिल्कुल बेफिक्र निश्चिंत स्थिति का, तो ये अनुभव आपके साथ रहेगा और कोई भी हलचल का वातावरण आएगा आप उसी अनुभव से उस बात को सहज पार कर लेंगे। नहीं तो कोई कहेगा अरे क्या ज्ञान है, कुछ नहीं है, ये सब ऐसे कहने की बातें हैं, अनुभव तो कोई ने किया ही नहीं है, प्रैक्टिकल तो कुछ है ही नहीं, हमने भी देख लिया। ऐसे बहुत सारे लोग भ्रमित करने वाले मिलते हैं और कई बाबा के बच्चे जिन्होंने अनुभव नहीं किया है कहीं न कहीं भटक जाते हैं। इसलिए बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे अनुभव की अथॉरिटी बन जाए। अगर आप किसी को कहो आत्मा हूं, ये आत्मा है, आप आत्मा है, आपका घर परम धाम है, आप इस सृष्टि नाटक के पाठधारी हैं, आप एक्टर हैं, आप हीरो पाठधारी हैं, कह रहे हो तो कम से कम उसका अनुभव तो होना चाहिए। और हमने अनुभव अगर किया है और हम फिर किसी को कहते हैं तो अधिक बोलने की जरूरत नहीं होती, वो सहज समझ जाता है ये जो कह रहा है इसने कुछ पाया है। तो कहते हाँ रटा दिया गया है, पढ़ा दिया गया है, वही कह रहे हैं। तो रटा हुआ नहीं बोलना है लेकिन अनुभव करके करना कहना है। तो आप सभी ऐसे अनुभव की अथॉरिटी बन करके जिसका भी अनुभव अभी तक न हुआ हो कुछ समय दो अपने को। हमारी दीदी जी का एक बड़ा अच्छा मंत्र था, हम लोग जब शुरू शुरू में आए हैं कहती थी अगर अपने को सुधारना है ना तो अपने को पढ़ाना आप ही सीख लो, किसी के पढ़ाने से आप नहीं सुधरोगे, मुरली और क्लास से नहीं सुधरोगे, लेकिन अगर समय दोगे अपने को पढ़ाओगे कि इतनी सारी आत्माओं में से ये ज्ञान बाबा ने मुझे क्यों दिया, मुझे क्यों चुना, मेरे पर नजर क्यों पड़ी, मुझे क्यों पवित्र और योगी बनने का ज्ञान दिया गया, सारी दुनिया विकारों की तरफ ढकेल रहे हैं जा रही है और मुझे बाबा ने निर्विकारी जीवन बना दी, क्यों बनाई, किस लिए बनाई, और जब बना ली है तो फिर उस तरफ मेरा ध्यान क्यों जा रहा है, क्यों अभी बुद्धि भटक रही है, क्या जो पाना था वो पाया है या अभी ऐसे ही सिर्फ सुना है। अनुभव करके दे उस निर्विकारी जीवन का अनुभव क्या है, उस पवित्र जीवन का अनुभव क्या, उसका सुख क्या है। बाबा कई बार कहते हैं ना पवित्रता सुख और शांति की जननी है। अब जब जननी है, हमने पवित्रता को अपनाया है, तो क्या उस सुख शांति का सदा अनुभव होता है। बाबा हमेशा एक शब्द अंडरलाइन कराते हैं सदा सदा, कभी कभी वाले बाबा को अच्छे नहीं लगते, कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया, तो सदा किया है या चल रहा है, ठीक है आज कर लिया कल भूल गए। तो अनुभवी आत्मा सदा काल उस अनुभव में रह सकती है। अगर मैं सचमुच पवित्र हूं तो दुख धाम के दुख की लहर मुझे टच नहीं करनी चाहिए, नहीं तो संपूर्ण पवित्रता की परसेंटेज में कमी है। अब पवित्रता की स्टेज केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, अगर हमारे अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, चाहनाएं हैं, कामनाएं हैं, बहुत कुछ भटकी हुई बुद्धि है, बाबा कहता है ये सब विकार एक विकार के पीछे आते हैं, ये भी पवित्रता की खंडित स्टेज है। इसलिए कोई भी विकारों का अंश भी हमें चेक करना चाहिए। बाबा कहता है रावण को मार तो देते हो लेकिन वो मरता ही नहीं है, फिर जग जाता है। तो हमारे अंदर जो सूक्ष्म रावण के अंश हैं हम चेक करें कौन से अभी तक है, किस रूप में है। केवल एक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लिया ठीक है, लेकिन मन भटक रहा है, बुद्धि भटक रही है, देहिक आकर्षण बढ़ती जा रही है, मन चंचल है, एकाग्र नहीं होता, तो ब्राह्मण जीवन का जो सुख है वो कैसे मिलेगा, परमात्म प्राप्तियों के सुख का अनुभव कब होगा। अब नहीं तो बाबा का एक स्लोगन था अब नहीं तो कब नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर हमने अभी नहीं कर पाया तो कौन से ऐसे दिन आएंगे जब हम वो अनुभव करेंगे। इसलिए सभी को लक्ष्य रखना है कि अभी तक अगर मैंने अपनी आत्मिक स्थिति का, अशरीरी स्थिति का, निराकारी स्थिति का, अव्यक्त स्थिति का अनुभव नहीं किया है तो उसके पीछे कारण क्या है, आखिर कारण तो खुद ही निकाल सकते। तो ऐसे अपने को पढ़ाओ, बात करो अपने आप से, मुझे आज ही करना है, अभी करना है, उस सुख में उस आनंद में मुझे खो जाना है, बस बैठ जाओ ऐसे। और कुछ अभ्यास नहीं, हम यही अभ्यास करते हैं, आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर बैठी है, इस शरीर से अलग है और अपने आप को बिल्कुल एक लाइट माइट स्वरूप में स्थित करके बाबा के साथ जितना हल्का हो जाओगे उतना ऊपर उठ जाओगे। ये देह देह की दुनिया देह के संबंध संस्कार सबसे न्यारे हो जाओगे और फिर जो अनुभव करना चाहो आपको होने लगे। लेकिन ये फाउंडेशन मजबूत चाहिए, कच्चा नहीं चाहिए। तो सभी इस फाउंडेशन को बहुत दृढ़ता के साथ कि मुझे कुछ न कुछ अनुभव करके अथॉरिटी बनना है, कर्मेंद्रिय जीत बन करके, निर्बंधन बन करके, बेफिक्र स्थिति में रह करके, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का, सदा संतुष्ट मणि की स्थिति का अनुभव करना है। तो अनुभव तो करने के लिए आपको अपने को पढ़ाना पड़ेगा, अपना टीचर अपने आप बनना पड़ेगा, एकांत में बैठना पड़ेगा, अपने को समय देना पड़ेगा। अपने को समय दो, बस 15 मिनट ही दो, ज्यादा नहीं। तो लेकिन अपने से बातें करो, अपने आप से पूछो कि बाबा आपने मुझे अगर अपना बनाया है, कुछ तो हमने इतने श्रेष्ठ कर्म किए होंगे, कभी तो आपकी इतनी अच्छी भक्ति की होगी जो आप मुझे मिले हो, इतना ऊंचा ज्ञान दिया है, अपना साथ दिया है, इतना अच्छा परिवार दिया है, इतनी अच्छी पालना दे रहे हो, हमें परिवर्तन होके जाना है। जो ऐसे संस्कार आपको लगते हैं जो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप संकल्प करो कि मुझे यहां से उसे परिवर्तन करके जाना है। तो दृढ़ता का संकल्प सिद्धियां दिलाता है, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं जो संकल्प करो ऐसे करो कुछ भी हो जाए, मुझे तो अनुभव करके जाना है। तो जहां दृढ़ता है वहां सफलता है, जहां हिम्मत है वहां बाबा की मदद है, जहां निश्चय है वहां विजय है, और जहां लगन है वहां विघ्न नहीं रहते हैं। ये विघ्न है, ये विघ्न है, ये विघ्न है, अगर कोई बार बार विघ्नों का वर्णन करता है तो उसे अपने आप से पूछना चाहिए कहीं लगन में कमी तो नहीं है। अरे जहां लगन लग गई, भगवान मिला है, निश्चय हुआ है, उस लगन के आगे कोई बात रुकती नहीं है। कभी ये कहेंगे नहीं मेरे बच्चे नहीं आने देते क्लास में, बहुत बहाना करते हैं लोग, बहानेबाजी है, माना लगन की कमी है। तो आप अपनी लगन को चेक करना, नहीं तो कई रुकावटें हैं, कई विघ्न हैं जो आपको इस ऊंची मंजिल में पहुंचने नहीं देंगे। ऊंची मंजिल पर पहुंचना है तो लगन की आग प्रज्वलित कर दो, कुछ भी हो जाए, हमें बाबा को जो बाबा ने कहा है वो अनुभव करके ही जाना है। ठीक है, ओम शांति। चलो 3 मिनट के लिए तो अनुभव में बैठ जाओ, अभी उठो नहीं, सब बैठ जाओ 3 मिनट के लिए, और शरीर की स्थिति का अच्छा अनुभव करो। इस शरीर से अलग मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, मैं एक अजर अमर अविनाशी एक लाइट हूं, इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान एक चमकता हुआ सितारा हूं, और बाबा की सर्व शक्तियों की लाइट मुझ सितारे पर डायरेक्ट आ रही है। मैं संपन्न हूं, मैं संपूर्ण हूं, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं।
जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से, ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे।
मुझे तुमसे।